है कि जो आपके सामने दुनिया पेश की जा रही है थ्रू मीडिया और डिजिटल मीडिया और सोशल साइंसेस मेथडोलॉजी के थ्रू, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन की, कि देखें ये कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो एक स्पेशलाइज एरिया के ऊपर जानते हैं, लेकिन एक वक्त वो चूंकि एक एरिया पे बहुत ज्यादा जानते हैं, दूसरे एरिया के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं होता, लिहाजा मुख्तलिफ एरियों में कदरों का तायुन मुख्तलिफ इल्मियतों की बुनियाद पर किया जाएगा। तो अभी तक मैंने जो गुफ्तगू की थी उसमें इल्मियत के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू नहीं थी, आज तक इल्मियत के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि इल्मियत का क्या ताल्लुक होता है खास किस्म की अकदार से, यानी कि अकदार क्या मावरा होती है इल्मियत के या सितम्मा होती है खास किस्म की इल्मियत के या मुख्तलिफ किस्म की इल्मियतों के पनपने के नतीजे में, ये प्रॉब्लम जो है आज हम डिस्कस करें। जो हमने प्रॉब्लमलाइज किया था जिस इशू को, वो इशू ये था कि देखें जी जिंदगी में मुख्तलिफ दायरों में आप मुख्तलिफ कदरों को पहचानते हैं, मसलन ये कि टेक्निकल बुनियादों पर चीजों को कदर का तयन करते हैं, अखबार का तयन करते हैं, कदरी हैसियतें टेक्निकल बुनियादों पर तय होंगी, या एथेटिक्स या जमालियात की बुनियाद पर कदर का तयन होगा, या क्या कहते हैं लिसानियात की बुनियाद पर या लैंग्वेज की बुनियाद पर जो है अखबार का तयन होगा, सिमेंटिक वैल्यूज होती हैं उसकी, वो मैंने एग्जांपल नहीं दी, अरे वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिमेंटिक वैल्यूज भी वैल्यूज होती हैं, सिमेंटिक वैल्यूज होती हैं, टेक्निकल वैल्यूज होती हैं, एथेटिकल वैल्यूज होती हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं और मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। और बजायर हम ये समझते हैं कि ये अलग अलग दायरे हैं कदरों के, यानी कि जिस चीज की सिमेंटिक वैल्यू हाई हो, जैसे ये जो हेडिंग होती है किसी भी अखबार की मेन हेडिंग जो होती है इसकी सिमेंटिक वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी कि लिटरल सेंस में क्यों हाई होती है, क्या इसमें फर्क होता है मेन हेडिंग में और कॉलम के वो क्या कहते हैं एडिटोरियल में बुनियादी फर्क क्या होता है,
ज्यादा इंटरेस्ट इफेक्ट होता है वो खबर है,
ये वजह इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, सही बात है, लेकिन सिमेंटिकली लिंग्विस्टिकली क्या फर्क होता है दोनों,
ये फैक्ट होता है,
देखो ओपिनियन इसमें भी हो सकता है, लेकिन जो ओपिनियन इसमें होता है वो बड़ा क्लियर होता है और मुख्तलिफ जहनी रुझानात और मुख्तलिफ इल्मी तनाजुर रखने के बावजूद लोग इस हेडिंग के मानवियत से डिसएग्री नहीं करते कि असल में इसने क्या बताया गया, जो भी हेडिंग होती है अखबार की उस पर कंसेंसस हो जाता है, अच्छा ये मतलब है, ये कहना चाहता है ये अखबार, वो सही है गलत है जो भी, लेकिन एडिटोरियल ओपन एंडेड होता है, उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पैदा हो जाती है, एक एडिटोरियल के अंदर बहुत सारी चीजें ढकी छुपी भी होती है, जो कि सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, सिमिलीज इस्तेमाल करता है, उसकी सिमेंटिक वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी के इस जुमले की होती है जो कि हेडिंग की सूरत में पेश किया था। तो इसी तरीके से जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो कोई इंसान जो गुफ्तगू करता है वो मजबूत गुफ्तगू है कि जो कह रहा है आदमी दूसरे तक वो बात कम्युनिकेट हो रही है और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कंसेंसस है कि ये मतलब है इसका, तो हम कहेंगे हाई सिमेंटिक का, यू नो व्हाट आई मीन, और अगर ज्यादा जोमानी है यू नो तो उसकी कुछ और, यानी कि उसकी लिटरल मीनिंग इतनी अहम नहीं है बल्कि उसकी इंटरप्रेटिव या हर्मेन्यूटिकल साइड ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा या मेटाफोरिकल है उसका एक्सप्रेशन, तो वो एथलेटिक्स में चला जाएगा। तो बताने का मतलब ये है कि बजाहिर आपको ये बताया जाता है कि जिंदगी में जिन चीजों को आप कदर की निगाह से देखते हैं, वो जैसे आप शायरी के अंदर एक ऐसा शेर है जिसकी जो मीनिंग है बड़ी फिक्स्ड है और एक ऐसा शेर है जो बड़े मीनिंग बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो हाई वैल्यू शायरी के अंदर कौन सा समझा जाए, बड़ा गहरा शेर कौन सा समझा जाए जिसके मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट, समझने के बाद नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये कि मुख्तलिफ स्टेट ऑफ अफेयर में वो फंक्शनल होती हुई दिखाई, लेकिन अखबार के अंदर अगर हेडिंग इस बुनियाद पर दी जाए तो जमालियाती सतह पर वैल्यू है उसकी, लेकिन सिमेंटिक प्लेन पर उसकी वैल्यू वो नहीं। तो जो मेटाफोरिकल मीनिंग होगी, एस्थेटिकल मीनिंग होगी, एस्थेटिकल वैल्यूज होंगी, वो वेरी करेंगी बाज़ औक़ात सिमेंटिक वैल्यू क्वांटिटेटिव वैल्यू। तो अदब के दायरे के अंदर मेटाफर्स की जो अहमियत होगी वो एक अलग होगी, और लिटरल इंटरप्रिटेशन की जो हैसियत होगी वो कुछ और होगी, और एक ही जबान के दायरे के अंदर कई किस्म के वैल्यू स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहे हैं। तो जो बताने की बात है वो ये कि हम आम तौर पर ये समझते हैं कि देखो भाई, एक आदमी अगर अच्छा अदाकार है तो हम उसको वैल्यू कर रहे हैं उसकी अदाकारी की बुनियाद पर, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि उस आदमी ने अपनी बीवी और दो बच्चों को तलाक दे के एक तवायफ से शादी कर, फिर उससे भी उस तवायफ को भी तलाक दे दी और फिर किसी और से तलाक दे, अब वो किसी एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जिससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ये एक इरेलेवेंट बात, ये एक इरेलेवेंट बात। हम उसकी इस वजह थोड़ी वैल्यू कर रहे हैं, उससे ऑटोग्राफ इसलिए थोड़ी ले रहे हैं कि उसने अपने बीवी बच्चों के साथ क्या सलूक किया, हम तो इसलिए उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं कि वो एक एक्टिंग करता है और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर उसने किए जिन कैरेक्टर को देख के हमारी अय्याशी की और हमारे नफ्सानी ख्वाहिशात की तस्कीन है, इसलिए हम उसको वैल्यू करते हैं, हम इसलिए थोड़ी वैल्यू करते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करता है, इससे इररेलेवेंट। तो उसकी वैल्यू जो हम कर रहे हैं एस्थेटिकली उसको वैल्यू कर रहे हैं, मॉरल प्लेन पर हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे। इसी तरीके से एक आदमी है जो कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर की टेक्निकल साइड की बुनियाद पर आप वैल्यू कर रहे हैं, किसी को आप सिमेंटिक बुनियाद पर वैल्यू कर रहे हैं। जो ये हम इस्टेब्लिश करते रहे कि कंपार्टमेंटलाइजेशन को हमने कबूल कर लिया है, जो चीज़ असल है, जो आज जो मैं बात कर रहा था कि ये इंसानी जहन ने यह कबूल क्यों कर लिया, कैसे कबूल कर लिया इंसान ने कि अकदार मुख्तलिफ दायरों के अंदर फंक्शनल होती हैं और मुख्तलिफ दायरों में फंक्शनल होने के बाद मुख्तलिफ पैमानों पर परखी जाने के बावजूद हम उनको कदर भी कह रहे हैं, गो के बाद औकात ये अकदारी ढांचे आपस में एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि इससे क्या फंक्शन, इससे क्या फंक्शन। एक आदमी है जो कि बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत तेज बॉल करता है वो, लेकिन वो अपने दूसरे जो फेलो मेंबर हैं उनको गालियां बकता है, उनको मारता भी है, और उनकी जो हुदूद हैं कि भाई ड्यूरिंग मैचेस आप शराब नहीं पियेंगे तो उसके भी वायलेट करता है, और औरतों के पास नहीं जाएंगे उसको भी वो वायलेट करता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे वैल्यू है एज ए स्पोर्ट्समैन वैल्यू कर रहे हैं। तो आपने उसे कबूल कैसे कर लिया कि उसके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का दूसरी अकदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम तो उसको टेक्निकली वैल्यू कर रहे हैं, या हम तो उसको क्या कहते हैं, इवन ये कि अब तो हालत ये हो गई कि कोई आदमी पॉलिटिकल पॉलिटिशनर होता है, पब्लिक मैन होता है, पॉलिटिशनर के बारे में एरिस्टॉटल कहता है पॉलिटिशनर इज ए पब्लिक मैन, देर इज नो प्राइवेसी ऑफ अ पब्लिक मैन। हालांकि वो कहता है क्यों पब्लिक मैन होता है, इसलिए कि उसकी मोरालिटी पब्लिक होनी चाहिए, उसकी प्राइवेट मोरालिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, इसलिए को पब्लिक मैन है वो, लिहाजा उसकी प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो सफर करेंगे वो सब लोग जिनके जो उसको रेलिंक्विश कर रहे हैं पावर, पावर रेलिंक्विश कर देते हैं ना आप उसको, तो वो कहता है पावर करप्ट एंड मोर पावर करप्ट मोर, तो जब पावर कॉन्सेंट्रेट होगी और एक ऐसा आदमी जिसकी पब्लिक प्राइवेट लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा मास्टर के लिए। लिहाजा ये हजरत ईसा की पैदाइश के 300-280 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और आज तक ये माना जाता था कि ये पब्लिक मैन होता है। लिहाजा ये आप लोगों को पता होगा अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर ये ओपन हो जाए कि इसकी पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो कि इस्टेब्लिश अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है तो प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ना उसमें मुश्किल हो जाता है। इस हालत में भी अमरीका के अंदर ये स्टैब्लिश कर दें कि कोई होमोसेक्सुअल लड़ा है कभी तो अमरीका में इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाता है।
खबर जो आई है रिपब्लिकन जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है उसकी बेटी प्रेगनेंट विदाउट मैरिज 17 ईयर्स की है वो आमदार उससे बहुत ज्यादा ग्राफिक की चला गया बट मेरा एक तूफान हो गया वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट
अमरीका का सही पाकिस्तान के अंदर आप ये कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी अपनी जिंदगी में क्या पड़ता है बदकिरदार है चोर है उचक्के हैं इससे क्या पड़ता लोग तो यही चाहते हैं कि ये रहें विल ऑफ द पीपल असर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो चीजें भी जिनपे हिस्टोरिकली ये रहा कि जैसे आर्टिस्ट होते हैं शायर होते हैं ये मॉरल वैल्यूज का इतना पासदारी नहीं करते वायलेट कर देते तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो शायर आदमी है छोड़ो आम एक क्लीशे रहा है कि शायर है यू नो गालिब के बारे में मशहूर है गालिब शराब नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली वो परेशान है नमाज भी पढ़ते थे यार मस्जिद जाके दुआ करता हूँ शायद शराब मस्जिद के दरवाजे पे या पहुंचे तो एक आदमी है अंदर जाने से पहले ही शराब की बोतल पकड़ा तो पकड़ शराब की बोतल लेके पाते मेरे तो उसने कहा कि गालिब का नमाज नहीं पढ़े या नमाज बोल रहे मस्जिद के दरवाजे से आया हो तो खुदा ने शराब की बोतल दे दी नमाज पढ़ ली तो शराब की बारिश हो जाएगी जा। तो ये जिगर जो है जिगर मुरादा वाली सारी नई शराब पीते रहे बाद रिलीजियस टर्न आया तो शराब बंद कर दी तो डॉक्टर ने कहा आपने पूरी जिंदगी शराब इतनी पी है कि लहू के अंदर दौड़ती है शराब नहीं पी तो इंतकाल मर गया तो बोलने का मैं इतना बदमाश हूँ कि शराब नहीं पीऊंगा तो हराम काम नहीं करूंगा तो मर जाऊँ तो फिर मुझे मर ही जाना इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ शराब नहीं पीऊँ शराब नहीं पी तबीयत खराब हो गई है बॉडी वो हो गई थी ना अल्कोहलिक हो गई अभी इस वजह से डेथ हुई है किस वजह से भी डेथ हुई है छोड़ दी तो आमतौर पर एथेटिक्स में जो लोग होते हैं उनके बारे में कहते हैं मॉरल वैल्यूज को वायलेट कर दें कोई मतलब लेकिन डॉक्टर मॉरल वैल्यूज को वायलेट कर दें तो लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे एक पॉलिटिशियन मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे एक नाच पढ़ने वाला एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे यू नो व्हाट आई मीन उसको हम टेक्निकल बुनियादों में नहीं लेकिन कंपार्टमेंटलाइजेशन का इम्पैक्ट कहता है कि लोगों ने इसको कबूल कर लिया इसको क्या कर सकता है ठीक है कोई बात नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अब्बा जो है एक मस्जिद में नमाज नहीं उन्होंने कहा कि वो मस्जिद के दरवाजे को आयत लिखवाई लिखी हुई थी उन्होंने कहा भाई आयत जो है इसमें यहाँ पे जजम लगा हुआ है तो जजम नहीं आना चाहिए तो ऐसा नहीं है जजम नहीं है ये खूबसूरती के लिए लगा दिया बोले नहीं ये तो जजम ही की सिंबल में लगा हुआ है अब कोई पढ़ेगा तो गलत पड़ेगा बोले नहीं तो बहुत मशहूर आयत है सबको पता है वो जो आयत है ना या यून सुमुतमाइना का तो ये बहुत मशहूर है मैंने मशहूर अशू की बात नहीं आपने गलत लिखी है नहीं तो ऐसा नहीं ये खूबसूरती के लिए अब ये कहाँ मिटेगी वो बोले आप उनको झगड़ा हो गया मेरा पद उनका नहीं है नहीं ऐसे ही रहे तो हमारे बने वहां नमाज पढ़ नहीं पड़ता कहीं और पढ़ते हैं बहुत दूर जाके नमाज घर के सामने मजबूर कहीं और तो उनकी लगती है हालांकि दोनों बड़े दोस्त हैं इनके 10 साल बड़ी फ्रेंडशिप रही है दोनों की दोनों और पेशेंट भी है मौलाना फिर भी दवा लेते हैं अब्दू वो कहते हैं अब मैं कहाँ मिटवाऊँ क्या, मुझे पता है ना आज की बात सुन। तो वो ये कहते हैं जो मिलने वाले हैं ना वो सब हमारे अब्बा से कह रहे हैं अरे छोड़े वो तो आपके दोस्त हैं अब छोड़े। मेरे अब्बा कहते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। गलत क्यों लिखी भी आए आयत गलत नहीं लिखी थी, वो ऐसे खूबसूरती के लिए लगाया। वो खूबसूरती के लिए क्यों लगाया है, जजन की फॉर्म
है।
तो लोग ये कहते हैं छोड़े इससे क्या पता था, आपकी फ्रेंडशिप भी तो है दोस्ती भी तो है, दोस्ती फ्रेंडशिप का इससे क्या ताल्लुक। तो लोग आम तौर पर कहते हैं कि अपनी जो एकेडेमिक पोजिशन है उसको अलग रहना चाहिए आपकी मॉरल लाइफ से, आपकी मॉरल लाइफ को अलग रहना चाहिए आपकी एस्थेटिकल लाइफ से। तो ये कैसे हो रहा है, तो जो आज हम बताएंगे वो ये कि एक इल्मियत है जिसने ये बताया, एक एपिस्टेमोलॉजी है जिसने कंपार्टमेंटलाइज किया। कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हुई बॉडी से, पहले तो बॉडी से शुरू हुई, यानी कि तुम्हारे जिस्म के कई हिस्से कर दिए है ना, तुम्हारे जिस्म के हिस्सों का दूसरे हिस्सों से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पूरा जिस्म एक साथ चलता है ना, फंक्शन करता है, लेकिन तुम्हें पता है आई स्पेशलिस्ट है, तो आई स्पेशलिस्ट नहीं पता कि इसका क्या असर पड़ेगा स्टमक के ऊपर, है ना। तो वो ये समझता है कि आई के हवाले से जितनी भी किस्म की ट्रीटमेंट होंगे इट हैज नथिंग टू डू विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टमक। व्हाई, बिकॉज इट हैज बायोलॉजिकली बीन एक्नॉलेज्ड, इट हैज एकेडेमिकली बीन एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज नो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ आई बॉल एंड द फंक्शनिंग ऑफ स्टमक। लेट सपोज इस वजह से एक आई स्पेशलिस्ट जब जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन करते चले जाता है आई की फील्ड में, उतना ज्यादा इम्कान खत्म होता चला जाए कि वो स्टमक के बारे में कुछ जाने। क्यों? क्योंकि स्टमक का वो इंसान का इलाज नहीं कर रहा, ही इज नॉट डीलिंग विद ह्यूमन, ही इज डीलिंग विद समथिंग स्पेसिफिक विच वी कंसिडर एज सेल्स ऑफ आय, ऑर्गेन के सेल्स के ऊपर जाओ। अच्छा, फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि आय जो रेटिना है उसके एक्सपर्ट है, कुछ कॉर्निया एक्सपर्ट है, कुछ आयरिस एक्सपर्ट है, उसमें भी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। तो जो कॉर्निया एक्सपर्ट होगा वो कॉर्निया के हवाले से बेहतर जानता होगा, यानी कि बाज़ औक़ात कॉर्निया के अंदर सुराख हो जाते हैं हल्के हल्के, वो हर आई स्पेशलिस्ट क्योर नहीं है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सिर्फ वो जो है कॉर्निया स्पेशलिस्ट वो ये काम कर सकता है। आयरेटोलॉजिस्ट जो है वो आयरिस के ऊपर काम करता है, इसका मतलब है आई के भी सब डिविजन होंगे। इसी तरीके से एनाटॉमी के अंदर भी सब डिविजन होंगी, ऑर्थोपेडिक में भी सब डिविजन होंगी, इसका मतलब है ह्यूमन बींग दरअसल कुल्लियतन कोई चीज नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये एलोपैथिक मेडिसिन का डोमिनेंट फ्रेमवर्क है और तुम लोगों को ये सब पता है कि इस वक्त का सबसे डोमिनेटिंग जो मेडिसिन की फील्ड में पैराडाइम है वो बायोलॉजिकल साइंसेस या एलोपैथिक मेडिकल साइंस है। दूसरी जो तरीके हैं जैसे होम्योपैथी जो है वो इंसान को कुल्लियत में देखते हैं, इसलिए वो मरीज का इलाज नहीं करते, मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज का इलाज नहीं करते। जो ट्रेडिशनल होम्योपैथ थे वो कहते थे एक ही दवा हर मर्ज के लिए नहीं दी जाएगी, मुख्तलिफ मरीज होते हैं, उसकी पूरी की पूरी टोटलिटी होती है, उसके हिसाब से वो दवा काम करती है। अगर फर्किया मर्ज साल तुम खा रहे हो और मर्ज साल खाने के नतीजे में तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्कसाल या मर्कार अब हर पेशेंट की झुर्रियां चेहरे की खत्म कर रही है, जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट मर्क का था इसीलिए वो उसको लग गई, अगर वो मर्क का पेशेंट नहीं होता तो उसको नहीं लगता। सही है, हाइलेमैन की ये थियरी है, इसको कहते हैं सिंगल रेमेडी स्ट्रैटेजी जो प्रैक्टिस की जाती थी जर्मनी में और फ्रांस में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इस्तेमाल की गई। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि होम्योपैथिक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं होती, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे इफेक्टिवली इस्तेमाल हुई है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुई उस जमाने में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बताने का मतलब ये है कि वो लोग मरीज को पेटेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, लेकिन क्या ऐसा है तुम लोग कभी गए हो होम्योपैथिक दवा मेडिसिन गए? वो क्या करते हैं, दवाएं देते हैं, पेटेंट दवाएं देते हैं लिख के, वो देते हैं। अब मगर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेटेंट मेडिसिन भी आ गए, जैसा ना एलोपैथिक में पेटेंट मेडिसिन है, पेट में दर्द की दवा, दांत निकलने की दवा, उस तरह इनके लिए। अब एक दवा जो है वो इस्तेमाल होती है बायोफोसिस 24। बायोफोसिस 24 जो है बच्चों को आमतौर पे देते हैं दांत निकलने में मदद देने का, लेकिन हर बच्चे को नहीं दिया। अगर उसके बाप के या माँ के या खानदान में किसी को कोई प्रॉब्लम रही है, कोई खास किस्म की प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी को बिसिलिनियम का पेशेंट है, मसलन किसी को ट्यूबर क्लोसिस रही है उनके खानदान में, तो उस बच्चे को नहीं देते वो। अगर वो दें तो इनकलकेट कर जाते हैं वो जरा सी, लेकिन अब बच्चों के दांत निकलने की दवा तो मांगो वो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर वाला तुम्हें बायोफोसिस 24 दे देगा। ज्यादा खाने से किडनी स्टोन हो जाता है सही, लेकिन लोग खिलाफ। इसका मतलब क्या है, होम्योपैथिक की जो एपिस्टेमोलॉजी थी डोमिनेट कर गई उस पर एलोपैथिक मेडिसिन की एपिस्टेमोलॉजी, जो इंसानों को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते थे वो मेथेडोलॉजी अप्लाई करती उस मेथेडोलॉजी जो जो इंसान को ट्रीट करते हैं। होम्योपैथ बॉडी का ट्रीटमेंट ही नहीं करता, रूह का ट्रीटमेंट करता है। हाइनेमैन कहता है कि जो दवा हमने बताई है इंसान की रूह के लिए है, लिहाजा रूह जितनी लतीफ होती है दवा भी उतनी लतीफ होनी चाहिए। तो दवा की क्वांटिटी कम करने से उसकी पावर इंक्रीज करती है, यानी कि अगर एक जहर से तुमने दवा बनाई है तो वो जहर तुम एक लीटर अल्कोहल में डालोगे, तो वो एक खतरा जब एक लीटर अल्कोहल में मिलेगा तो जहर कम हो गया ना ओवरऑल उसकी क्वांटिटी, फिर उसको अच्छी तरह हिला के उसमें से एक खतरा निकाल दिया तो उसके अंदर हजार मॉलिक्यूल फर्क किया, एक लाख मॉलिक्यूल फर्क किया उस खतरे के अंदर अल्कोहल के और 100 मॉलिक्यूल फर्क किया उस जहर के, फिर वो खतरा फिर एक और चीज में डाला, फिर उसको हिलाया, फिर उसमें से एक खतरा निकाला, निकालते चले। तो जितना आप डाइल्यूट कर रहे हैं उस जहर को उसके नतीजे में उसकी कुव्वत उतनी बढ़ रही है, उसकी पावर उतनी बढ़ रही है। क्योंकि एक आदमी ने कहा हाइनेमैन से कि भाई इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर सबसे ज्यादा पावर हो तो वो होगा जो कि फिजिकल हो ही नहीं, बस उस जहर के करीब से गुजर जाए कोई आदमी तो अफेक्ट कर जाएगा वो जहर। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो नेचुरल वर्ल्ड है जब उसमें चलते फिरते हो तो पता नहीं कौन कौन सी जो नेचुरल वर्ल्ड है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके इम्पैक्ट तुम्हारी रूह ले रही होती है। इसीलिए कहा है कि इस वक्त ये काम करो, इस वक्त ये काम करो, इस वक्त ये काम करो। बुद्धिस्टों का पूरा ट्रेडिशन है कि जब धूप इस वक्त की हो तो इस तरह के पॉस्चर चाहेंगे, अभी धूप इस तरह की हो तो इस वक्त के पॉस्चर होंगे, जब धूप इस तरह की हो जाए तो इस तरह के, अंधेरी रात होगा तो इस किस्म के पॉस्चर, चांदनी रात होगी तो इस किस्म के पॉस्चर। इसी तरह सूफिया के बाद इबादत मुख्तलिफ, इस वक्त से ये इबादत होगी, इस वक्त से ये इबादत होगी, इस वक्त सजदा नहीं होगा, इस वक्त सजदा होगा, इस वक्त खड़े कयाम होगा तवील कयाम होगा, इस वक्त में सज्जे में तवील कयाम होगा। ट्रेडिशनली टोटेलिटी में ही इंसान को लिया जाता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ये एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है मॉडर्न वर्ल्ड की है, मॉडर्न वर्ल्ड का ही आदमी है, उसने एक एपिस्टेमोलॉजी दी कि बेटा इलाज जो है मर्द का नहीं करना, मरीज का करना है, एक ही मरीज को दूसरी दवाएं दी जाएगी। इसीलिए कभी होम्योपैथिक दवा से आपको फायदा हो कभी दूसरे को प्रिस्क्राइब ना करें उसको नुकसान हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको फायदा हुआ कोई फायदा हो जाए, लेकिन अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोग फायदा भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइनमैन की थियोरी ठीक है, या इसका मतलब ये है कि आपने इंसान की जिस्म को उसकी रूह के साथ जो ताल्लुक था ब्रेक कर दिया, रूह के साथ जो जिस्म का ताल्लुक था उसको आपने ब्रेक कर दिया, या रूह होती ही नहीं जिस्म ही होता। ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, एक एपिस्टेमोलॉजी जो इंसान को खानों में बांट कर पहचानती है, वो एपिस्टेमोलॉजी जब इंस्टीट्यूशनलाइज होती है और फलती फूलती है तो वो इल्मियतें भी उसी फील्ड की जो कि इंसान को खानों में नहीं बांट के देखती मुतासिर हो जाती है और वो तर्ज इख्तियार करती है जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन एस्टेब्लिश होती चली जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मेडिसिन के अंदर अगर इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है तो क्या सिर्फ मेडिसिन में ही हो रही है? इंसान को अगर बांटा गया है तो क्या सिर्फ इंसान को ही बांटा है? तो फिर आप देखें इंसान की जो मुख्तलिफ जहदें हैं उनको भी बांट दिया गया, यानी कि इंसान जब मुलाजिमत करेगा या माशी मामला को डील करेगा तो उसकी जहद क्या होगी, उसके लिए पूरी इल्मियत खड़ी की गई, इकोनॉमिक्स का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो महज इंसान की उन तरजीहात को सामने रखकर वजह किया जाने वाला इल्म है जो कि उसकी इकोनॉमिक नीड्स की सेटिस्फेक्शन के मुख्तलिफ मोड्स को डिटरमिन। लिहाजा अगर तुम एक इकोनॉमिस्ट से जाके ये पूछो कि देखेगा ये जब इंसान इस किस्म की एक्टिविटी करेगा, इस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी रूह के अंदर क्या गैप्स पैदा हो जाएंगे, तुम्हें मैं गारंटी से कहता हूँ कि तुम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जाके किसी भी जो बेहतरीन उनका पढ़ा लिखा आदमी तो मुझे मुझे क्या पता, या उसका जवाब देने की जो कोशिश करेगा इकोनॉमिक के बाहर किसी इल्मियत की बुनियाद पे देने की कोशिश करेगा, इकोनॉमिक के अंदर से देने की जरूरत नहीं है उसको। क्यों? इसलिए इकोनॉमिक इससे बहस ही नहीं करती। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या इकोनॉमिक डिस्कोर्स के डोमिनेट करने के नतीजे में क्या वो चीजें जिनका डायरेक्टली इकोनॉमिक से ताल्लुक नहीं है अन एड्रेस रह जाती है जिस तरह वो टीचर कहता है? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई रूहानी मसला आपके सामने आता है तो आप उसकी जो तौजीह पेश करते हैं वो इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर करते हैं, जब कोई नफसियाती मसला आपके सामने आता है तो आप इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर उसकी तौजीह पेश करते हैं, जब कोई समाजी मसला आपके सामने आता है तो आप इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर उसकी तौजीह पेश करते हैं, गो के इकोनॉमिक डायरेक्टली उस सवाल से एड्रेस नहीं करते। यानी कि एक आदमी चिड़चिड़ा हो गया है तो आप कहते हैं चिड़चिड़ा इसलिए कि बेरोजगार हो गया, तो रोजगार की फरामी और रोजगार की तरजीहात का तयन ये कौन करता है? तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर होगा ना। इसका मतलब है कि नॉर्मल इंसान का पैमाना, नॉर्मेलिटी का पैमाना कहां से आएगा? इकोनॉमिक्स से आएगा। गो की वो डायरेक्टली डील नहीं करती इसकी, लेकिन तमाशा ये है कि नफसियाती मसाइल के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो तुम्हें लिंक करने की कोशिश करेगा विद दी स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ दी मार्केट, मार्केट के लिए फंक्शनल बनाएगा तुम्हें। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी को भी डोमिनेट करता है, सोशियोलॉजी को भी डोमिनेट करता है, एंथ्रोपोलॉजी को भी डोमिनेट कर रहा है, एथेटिक्स को भी डोमिनेट कर रहा है। एक हमारे स्टूडेंट ने पेंटिंग की, वो टीचर, वो घोटकी से आया और यहां आने के बाद उसने इतना बेहतर परफॉर्म किया कि हर सेमेस्टर में उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो बेस्ट स्टूडेंट समझा जाता अपने डिपार्टमेंट में। उसके बाद मास्टर वो ऑनर्स में उसकी पोजीशन आई तो उसको अपॉइंट कर लिया। गरीब माँ बाप का बच्चा है, बिल्कुल मजदूर है फैमिली का, जो उसमें इंसानियत है बहुत ज्यादा, और वो एक जी जाहिर मैं यही हूँ सुबह तक मिल गई, मैंने मैंने कर लिया ठीक। ओके अब मसला क्या है, मसला ये है कि वो लड़का जिस किस्म की पेंटिंग बनाता है ना, क्योंकि वो एक गरीब माशरे का, लिहाजा वो एहतजाज होता है उसके काम में माशरे के ऊपर, इस चीजों के ऊपर स्टेटस को, उसकी कोई पेंटिंग बिकती नहीं, उसकी बिकती क्योंकि दो तीन नहीं बिकी उसकी पेंटिंग, तो उसको मशवरा ये दिया गया कि भाई देखो अगर तुम्हारी पेंटिंग बिकी नहीं ना तो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि तुम एक बेकार आर्टिस्ट हो, हालांकि वो टेक्निकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो उससे कहा गया कि तुम ऐसी पेंटिंग बनाओ जो बिक जाए, फिर तुम्हें जो अपने वो करने रेवोल्यूशनरी वो बातें वो करो, लेकिन रेवोल्यूशनरी जो कंगले होते हैं ना, कंगले होते हो तो वो कहां से खरीदे, वो अप्रिशिएट करेंगे, खरीदेगा तो हराम खोर तुम्हारा का, तो ऐसा काम करो जो हराम खोरों को पसंद है। तो मुझे क्या पता है हराम खोरों को क्या पसंद आता है, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता उस तरह, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा फिर तुम ये काम छोड़ो, और लिहाजा उसने एक इस तरह की पेंटिंग बनाई जो बिक जाए, जो जिसे वो कबूल कर ले ऐसी चीज। बोले हाँ अब अगर ये बिकनी शुरू हो गई तो फिर ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि तुम बिकने वाले आदमी हो, लिहाजा तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, फिर तुम अगर अपना रेवोल्यूशनरी आर्ट लाओगे वो भी बिक जाएगा। बात समझा रही है? तो इसका मतलब क्या है कि एस्थेटिक वर्थ तुम्हारी डिटरमिन होगी अगर तुम्हारी मार्केट वर्थ है, अगर मार्केट वर्थ तुम्हारी ठीक है तो तुम्हारी रेवोल्यूशनरी ख्यालात को भी एक इजहार के तौर पे ले लेंगे। वो क्या है, जमीन जालवी को भी तो खरीदते हैं ना आप सब लोग, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता, अब करते हैं फैस को भी करते हैं, जमीन जालवी को भी करते हैं, और पिकासो को भी करते हैं, और वॉन गॉग को भी करते हैं। तो वॉन गॉग की तो ये हालत भी नहीं थी कि वो जो है अपनी महबूबा को गिफ्ट दे सकता, उसने अपना कहानी काट के दे दिया, चलो यही दे दो कहानी काट के, तो उसने कहा कान काट के दे रहा है, संगला है बिल्कुल पागल ही है, मेरा कान ना काटे चल रहा है सही है, तो उसकी समझ में नहीं आया, बताओ उसको कोई मशवरा देता है बेटा इस तरह की पेंटिंग बनाओ तो दिख जाए। तो बताने का मतलब ये कि ये इल्मियत है ना एपिस्टेमोलॉजी का, कि जो इल्मियत है उसकी फोर्स है जो रीस्ट्रक्चर कर रही है सोशियोलॉजिकल थियोरी को भी, एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी को भी, एथेटिक थियोरी को भी, कल्चरल थियोरी को भी। क्या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की कोई थियरी फंक्शन कर सकती है विदाउट इकोनॉमिक एनालिसिस? कर सकती है कोई सोशियोलॉजी की थियरी, कोई साइकोलॉजी की थियरी कर सकती है? इसका मतलब ये है कि आप ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, बजायर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन लग रही है, लेकिन वो कंपार्टमेंटलाइजेशन एक किस्म की यूनिफिकेशन है, कोहेरेंस है उसके अंदर, वो हर जगह पर फंक्शन करती हुई तुम्हें दिखाई देती है। लेकिन इसको मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा, पहले तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि इल्मियत का जोर जो होता है वो कैसा आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होता है। हर ये कि रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस को आप रिकंसाइल कर लेते हैं, यानी कि रिलीजियस जो सिंबल्स हैं आपके उनको भी आप उनकी लेजिटिमेसी आप बताते हो इकोनॉमिक वर्थ की बुनियाद पर। भाई देखें रमजान जो होते हैं उसमें जो है इतनी एक्टिविटी होती है, इतनी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जिसके नजर में इकोनॉमी अच्छा रिस्पांस देती है, एक आता है बुल्स एंड बेयर, एक बुल्स एंड बेयर समझते हो, ये जो जॉइंट स्टॉक मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, उनको बुलिश ट्रेंड है या बेयर का ट्रेंड है, ये ट्रेंड से पता चलता है। तो वो जो ट्रेंड्स आते हैं उसके अंदर रमजान, जैसे क्रिसमस अगर हो ना यूरोप में, तो वो ट्रेंड तब्दील होते हैं मार्केट में, क्योंकि उसमें लोग जो है फाइनेंशियल मार्केट से ज्यादा गुड्स मार्केट में फोकस करते हैं, खरीदारी ज्यादा होती है। तो शेयर वगैरह के बजाय आप इसी चीजों में गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, गुड मार्केट में ज्यादा आप। तो यानी कि रमजान की सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा खरीद और फरोख्त होती है, ज्यादा खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, कम खरीदो फरोख्त होनी चाहिए, उसमें तो कम खरीदो फरोख्त होनी चाहिए, ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब लोग ज्यादा खा रहे हैं, पहले ज्यादा खा रमजान में ज्यादा खाते हैं, अभी तो ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा महंगी हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रिलीजन को भी इकोनॉमिक्स के दायरे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बजाहिर आपने ये कहा हुआ है कि खानों में हमने अलग अलग बांटा हुआ है, लेकिन उन तमाम खानों की एक यूनिफाइंग फोर्स है जो उन सबको मिलाकर एक बड़ा वैल्यू स्ट्रक्चर देती है, और वो वैल्यू स्ट्रक्चर ही दरअसल असल वैल्यू स्ट्रक्चर होता है जो गालिब हो, और उनमें जो अवधार का तायुन होता है वो दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रक्चर को भी मुतासर करता है। अगर तुम एक अच्छे टीचर हो तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं होने का मतलब ये तुम अच्छे टीचर नहीं हो, ये कैसे मुमकिन है कि तुम अच्छे टीचर हो तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये कैसे मुमकिन है तुम अच्छे डॉक्टर हो तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये कैसे मुमकिन है तुम बड़े आलिम और तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि तुम एक बड़े आर्टिस्ट हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं। इसका मतलब है सबके अंदर ये कदर मुश्तरक है ना भाई है? ये कोई मैं ऐसी बात दे रहा हूँ उसे बहुत फिलोसोफाइज करना पड़े। इसका मतलब है कि बड़ाई में इन सबके दायरे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ दायरे हैं इनके सबके, तुम्हें बड़े पॉलिटिशियन तुम्हारे पास पैसे नहीं, ये कैसे हो सकता है तुम्हारे पास पैसा नहीं। तुम्हारा जो माशरा है उसमें अगर तुम एक सियासतदान हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग तुम्हारे पीछे नहीं आते। पाकिस्तान से तीन वोट मिले, एक हमारे गांव जहां मेरा ससुराल है उनके गांव, वो बहुत ही शरीफ आदमी है और बहुत ही शरीफ खानदान का है, और उनका खानदान जो है मुस्तकिल रिस्पेक्ट किया जाता है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल नोबल फैमिली है, वो बुनियादी तौर पर बारानी जमीन पे काम करने वाले किसान हैं, लेकिन उनके पास इल्म है, हकीम भी है उनके अंदर और हाफिज भी है उनके पास उसी खानदान में, लेकिन है वो पेशे के एतबार में वो लोग किसानी हैं, उन्होंने कभी अपनी हिकमत को पेशे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी तालीम मतलब पढ़ाने को कुरान में, यानी कि वो कह रहे थे मेरे ससुर के जैसे जो गांव के अंदर 90% लोगों को जो कुरान और नमाज और हज और रोजा और ज़कात सब पढ़ाया वो इन्हीं के खानदान ने पढ़ाया, इतना पावरफुल खानदान है और वो किसान है और बारानी जमीन पे बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई फसल तो तुम मरो फिर, लेकिन उन्होंने अपनी उस उन उलूम को कभी इस्तेमाल नहीं किया किसी और दूसरे चक्करों के चक्करबाजी के लिए। उस खानदान से एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया, सब डर रहे थे ये कैसे इलेक्शन में खड़ा हो गया, ये जो मिनिस्टर है ना पानी और बिजली का राजा अशरफ उसी इलाके से जीता है भैया, उसको तीन वोट मिले जो बड़ा नोबेल आदमी है जो तीन वोट, वो बड़ा चतंगी मछली थी वही हो इस खानदान का आदमी आ गया है और ये और वो उनको तीन वोट, उनकी अपनी बरादरी ने भी उनको
फैमिली जो थी
उनकी फैमिली में कुछ थे नहीं और उनकी बरादरी ने उनकी जो कास्ट थी ये राजे हैं उन्होंने नहीं दिया वो उसी कास्ट का है राजे हैं ये लोग तो बताने का मतलब ये कि नहीं उन्होंने सब ये शरीफ आदमी क्या करेगा शरीफ आदमी वोट इसलिए नहीं दे रहे कि शरीफ आदमी है
ये नहीं कर सकता
शरीफ आदमी है ये कहाँ से वोट बनवाएगा कहाँ से करेगा ये वजीर नहीं बन सकता ये तो बेचारा कहीं बैठ जाए किसी उसी उसी को बिठा देंगे शरीफ होने की वजह से उसको वोट नहीं ठीक है ना तो तुम ये समझना कि हमारे मुल्क में पैसे वाले की इज्जत झूठ बोलते हैं पैसे वाले की ही इज्जत करते हैं लोग असल में इज्जत उसी की ही करते हैं वो आलिम दीन जो कि 36 लाख की लैंड क्रूजर में आके वो पढ़ाता है तरावी और वो आदमी साइकिल पे आके तरावी पढ़ा मैं तो मजाक हूँ जाके तुम देख लो वहाँ ये अगर तुम्हें कहीं शॉपिंग पे जाना है फैमिली के साथ गए फैमिली को तुम बाजार में जोड़ दो जिस वक्त चाहो तुम तरावी पढ़ सकते हो उसमें तारीफ रोड की मस्जिद है उसमें बहुत सारे लोग तरावी पढ़ा रहे एक तो मेन तरावी भी हो रही थी और नीचे यानी कि जैसे ये हाफिज कुरान है तो ये हाफिज कुरान है तो ये आके तरावी पढ़ा रहे यानी कि अपने फैमिली को लेके आ गया ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाए और घर के मेंबर पीछे तरावी पढ़ ले एक पारा पढ़ दो तो फिर तो उसमें उनसे भी लाइने थोड़ी लाइन किसी भेजे दो भेजे तीन भेजे पांच दस तो मैं एक स्टडी मेरी के भाई तीन भेजे मैं दो अपने खानदान वालों को ले आता है ऐसा नहीं बाद में पता चल रहा कि बाज लोग जो हैं वो जो उनके पीछे पढ़ते हैं ना उन सबको जोड़ा मिले सबको एक एक जोड़ा मिले नहीं मतलब वो तो अपने खुलूस में कर रहा है कि भाई मैं कुरान पढ़ूं मेरे पीछे पढ़े अब मैं तोहफत है इनको दूं दिमाग आदमी का जो पीछे पड़ा खड़ा हुआ है उसका दिमाग क्या कर रहा है उसका दिमाग क्या काम कर रहा है वो कहते हैं कि भाई हमारा तो नीचे नहीं काम करते पेंटों की दुकान पे और ये वो लड़के कहते भाई हमारा तो इस तरह हो जाता है कि हम देख लेते अच्छा इनके आज इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे एक अब्दाई की बोतल में हमारे एक दोस्त है उनका बेटा भी पढ़ाता था तो वो लोग हमदर्द में है तो हमदर्द में उनको मोसने रूअब्दा की बोतलें करती है रूअब्दा की बोतलें सबको मिलती है तो वो मशहूर है अच्छा इनके पास रूअब्दा की बोतल मिल तो भाई हम रमजान में है इसे एक दिन इनके पीछे तराई पड़ेंगे रूअब्दा की बोतल मिल जाएगी इनके लिए गिरा मिल जाएगा तो मुख्य हो गया सब ऐसा हो तो वो अच्छाई के लिए किया है कि भाई मेरे पास ये है अपने भाई दोस्त मुसलमान भाइयों के लिए देने के लिए जैसे हमारे मोहल्ले में एक साहब है तो वो सबके घरों में खजूर भिजवाते हैं रमजान के लिए क्यों क्योंकि उनकी सिंध में जमीन है वहां से उनके पास आता है तो सबको ये तो मोहब्बत की बात है अच्छी बात है लेकिन जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज होती है और ह्यूमन माइंड उसको कैसे प्रॉब करता है वो तरावी नहीं बने जा रहा वो और कंडेम भी कर वो होटल में पाता इनके पीछे कुछ भी नहीं मिला सिर्फ बालूशाही पकड़ा दी दो कंडेम भी मुझे भी मिली रू अफजा की बोलते मैं गया पांच के साथ मिली मैंने कहा चल मुझे चलो मैं यहाँ पढ़ूंगा तरह पिछले साल तो मैं गया तो वहां तीन लाइन तीन खड़े हुए थे तो एक पारा पड़ा बड़ा हाँ एक ही पारा पड़ा मैंने कहा कौन सा पारा पड़े भी पता नहीं बारवा चौदवा तो हमारे मोहल्ले में चौदवा पड़ा मैंने कहा चलो इनके पीछे पढ़ लेता इनके भी खड़ा हुआ तो एक बोतल मिली मिचल्स की मतलब वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लाते हैं ये क्या तो बताने का मतलब ये कि अगर फर्ज कर लो कि एक अच्छी चीज है लेकिन उसको बुरे मकासद के लिए लोग इस्तेमाल करें तो वो जिन लोगों को बाज लोग ऐसे आदमी के पीछे पढ़ते हैं जो साफ कुरान पढ़ता हो बाज लोग इसलिए पढ़ते हैं एक आदमी के पीछे तरावी कि उसके लफ्ज समझ में आने चाहिए जैसे मेरे अब्बा लफ्ज समझ में नहीं आए ना तो नहीं पढ़ते तो इतनी तेज पढ़ता है समझ में नहीं आता तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होती कुछ लोग होते हैं बहुत खूबसूरत पढ़े चाहे जितनी भी कोई लोग कहते हैं जल्दी जो खत्म हो जाए, मैं मेरे भाई जल्दी इससे खत्म हो जाए, 15-20 मिनट में खत्म हो सकती है, वो नहीं जल्दी जल्दी खत्म, कम अगर पौन घंटा तो लगे, चलो पौन घंटे वाले जल्दी से खड़े जल्दी जल्दी और बड़ी खुशी होती आती है जैसे ही खत्म होने लगती है ना, खुशी होती रहती है। और अगर वो जरा तेज धीरे धीरे पढ़ने वाले हों, रोक रोक तो पढ़ना होगा भाई, ये तो ईशा हो वो हो जाएगी, फजर हो जाएगी। तो मुख्तलिफ प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी ये भी है कि ये देंगे क्या मुझे, ये भी एक प्रायोरिटी। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो कंपार्टमेंट्स तो हैं लेकिन उनकी एक यूनिफाइंग फोर्स है, और वो यूनिफाइंग फोर्स के पीछे एक इल्मियत है कि इंसान कोई भी काम क्यों करता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी आजादी में इजाफा करे। इंसान कोई भी काम क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी लज्जत में इजाफा करे। इंसान कोई भी काम क्यों करता है, क्योंकि वो खुदा की खुशनूदी ज्यादा से ज्यादा हासिल कर ले। या खुदा, इंसान कोई भी काम क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के को जोड़ सके उन रिवायात से जिनका वो अमीन है। तो मुख्तलिफ इल्मियतें हो जाएगी। तो जो इल्मियत प्रिवेल करती है वो कंपार्टमेंट्स को रिकनसाइल कर लेती है, और अकदार की तरतीब का पैमाना उस इल्मियत से हमांग होगा, तो उसमें आप तरक्की करते चले जाओगे, आपके लिए उसको समझना और उसमें सक्सेसफुल होना आसान हो जाएगा। अगर फर्ज किया तुम्हें ये पता ही नहीं है कि माशरे में कदर की बुनियादें क्या हैं, तो जाहिर है कि तुम्हें कदर काबिल कदर बनना मुमकिन नहीं रहे, लेकिन अगर तुम्हें पता चला माशरे में कदर का तायुन इस बुनियाद पे हो रहा है तो वो हासिल कर लो, तो तुम्हें कदर मिलेगी, है ना। तो अगर फर्ज किया कि माशरे में कदर का तायुन जो है वो तुम्हारे सरमाया जमा करने की सलाहियत पर होता है, तो तुम सरमाया जमा करो, तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर भी मिल जाएगा, बेहतरीन बीवी भी मिल जाएगी, बेहतरीन वकील भी मिल जाएगा, बेहतरीन जो है वो तुम्हें सहाफी सपोर्ट भी मिल जाएगी, सहाफती सपोर्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बेहतरीन सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम एक ऐसे माशरे में जिसमें कदर का टाइम इस बुनियाद पर होता है कि तुम खुदा के कितने मुकर्रब बंदे हो, एक माशरा ऐसा है, और तुमने खुदा का कुर्ब हासिल कर लिया और नबी की सुन्नत को जिंदा कर लिया, तुम माशरे में काबिल कदर हो जाओ, माशरा पहचान लेगा तुम्हें, काबिल कदर हो जाओ, लोग तुम्हारे आगे सरेंडर करेंगे। अगर माशरे में कदर का मेयार रजा इलाही का वसूल ही है, अगर माशरे में कोई दूसरी रिवायत है, फर्क है कि रिवायती माशरा है, एक रिवायती माशरा है जिसमें आबाओ अजदाद कि जो प्रैक्टिसेस हैं उसको वाकई माशरा वैल्यू करता है, एक तो उसको भुगत रहा है नहीं वाकई वैल्यू कर रहा है, और तुम आबाओ अजदाद की कदर का तायुन करते हो और हकदार का, तो वो कहता है कि भाई वो आदमी ट्रेडिशनली वैल्यूबल हो, यानी कि जैसे जो अमेरिकन थे तो जब किसी से मिलते थे तो जब किसी जगह पर अपना हक जताते तो उसकी बुनियाद क्या होती थी, उसकी बुनियाद ये होती थी कि ये वो जंगल है जहाँ पर मेरा बाप अपने दादा के साथ शिकार करता, और ये जंगल वो है जहाँ पर मैं अपने बाप के साथ शिकार करता, और ये जंगल वो है जिसमें मेरे साथ मेरा बेटा शिकार करता, और जब मेरे बाद मेरा बेटा अपनी औलाद के साथ इसमें शिकार करता। अगर ये कंसिस्टेंटली एक्नॉलेज हो जाए तो फिर वो जंगल में उसी बात समझा नहीं। तो जो आदमी अपनी रिवायात का अमीन है और रिवायती माशरा है तो उसमें वो कदर की निगाह से देखा जाए। इसी तरीके से एक माशरे में अगर अकदार की तरतीब मार्केट फोर्सेस कर रही है तो उसके नतीजे में मार्केट डिटरमिन करेगी कदर का, और मार्केट ने अपनी डोमिनेशन ऐसे ही इस्टेब्लिश नहीं की, उसने वो तमाम इल्मियतें जो कि रिवायती इल्मियती मेयार को बरकरार रखी उसको تباہ کر دیا. وہ جو کہ مذہبی معیار سے اقدار کی ترتیب کو اس کو تباہ کر دیا. اس نے وہ معیار جو کہ مارکیٹ ریشنالٹی کے خلاف تھے ان اقدار کی علمیتوں کو جڑوں سے کاٹ دیا. اور جب وہ کٹ گئی تو اس کے بعد جو علمیت آ گئی اس نے ان تمام دائروں کو ختم نہیں کیا, مذہبی دائرے کو اور اخلاقی دائرے کو اور جمالیاتی دائرے کو اور روایتی دائروں کو ہمانگ کر اور اس لڑی میں پھرو دیا. جس طرح صبح ہم جب سے روزہ کھل رہا ہے نا تو ہمارے یہاں پی ٹی وی ورلڈ ایک ہوتا ہے, اس میں ایک ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جو شریک گفتگو تھے جب ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو تھے ڈاکٹر فلاں فلاں صاحب. تین دن تک تو بھائی سمجھ میں نہیں شریک گفتگو تھا کہاں, یہ جو شریک تھا کہاں سے شریک ہوا, کب شریک ہوا, میں تو دیکھا ہی نہیں اس کو. انہوں نے اللہ رسول نے کیا باتیں بتائی ہیں, کوئی بات ہی نہیں, مستقل ایڈ آتے رہے. تو میں نے کہا میں پانچ بجے سے میں نے ٹی وی لگا کے بیٹھی پرسوں پانچ بجے میں نے ٹی وی لگا لیا, پانچ بجے وہ آئے ابھی مولانا صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر فلاں صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. مولانا صاحب شریک گفتگو ہوں گے اور فوراً وہ آ گیا حبیب. حبیب کے ایڈ آتے رہتے 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 یہ نہیں کہ بھائی چھوڑو تم یہ کیوں لا کے بیٹھے فضول بولا. میں نے یہ دیکھوں گا میں مولانا صاحب کیا بتا رہے میں سننا چاہتا ہوں. وہ جب میں مولانا صاحب کو کچھ میں کہہ دوں نا ادھر ادھر تو میری بھی کہتے فوراً جہنم میں چلے جائیں گے, زبان کی بنیاد پہ لٹکائے جائیں گے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو زبان سے لٹکائے جائیں گے. تو ایک روایتی جس طرح ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں کسی بھی پیرائے میں بنا رہا ہوں صحیح ہوتی ہے تو میں سننا ہے. انہوں نے پھر بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ آگے جیسے وہ آئے مولانا مولانا کے پیچھے اتنا بڑا پلازما ٹی وی لگا ہوا, وہ اپنا اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, پیچھے آل پرس کا اشتہار چل رہا ہے بغیر آواز کا. آل پرس کا ایک اشتہار ہے جس میں ریڈ کلر میں لڑکیاں ناچتی ہیں اور وائٹ کلر میں لڑکیاں ناچتی ہیں, گول گول گھومتے ہیں, گول گول گھومتے گھومتے یوں کر کے وہ مل جاتی ہیں. تو پھر وہ ایک دودھ کی نہر وائٹ اور آل پرس کا ریڈ کلر تو وہ اس میں مرج ہو جاتا کہ وہ لڑکے ناچتے نا وہ اللہ رسول کی باتیں بتا نماز وہ بول رہے ہیں کہہ رہے جو روزے میں جو ہے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے اور اپنی نظروں کو نیچے رکھا جاتا ہے اور پیچھے وہ گھوم رہی ہے پیچھے گھوم رہی میں کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اور وہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا ذہن خراب ہے نا, آپ کا دماغ خراب, ذہن گندا, آپ ان کی اللہ رسول کی باتیں وہ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تم کیوں کنڈیم کر رہے ہو, اس کو تم کنڈیم نہیں کر رہے ہو, کیوں بیٹھا ہوا وہ نہیں دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے میں میرے ساتھ اور کیا کیا دکھا رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اچھی لگتی ہے, اس میں سب ناچنے اور کھائے جا رہے ہیں, پیچھے یہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے بات کر رہے ہیں. اللہ رسول کی تزکیہ نفس کی اور اس کی اور کم کھائیں اور آدھے پیٹ اٹھے مستقل اسے کھانے کی تیار رہے گا, مستقل پراٹھے مستقل گول مستقل یہ, اور وہ کہہ رہا ہے کم کھانا چاہیے کم. اس کے بعد وہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گول میں سناتا ہوں حدیث, ایک دم سے وہ آ گیا چلیے وہ ٹائم چیک آ گیا, پندرہ پندرہ منٹ میں ٹائم چیک, ٹائم چیک کے بعد ایک ایڈ شروع ہوا بہت دیر کے لیے وہ غائب ہو. میں کہا کرتا پھر وہ تو جو بات کر رہے تو میں نے تو چونکہ کانشیسلی مانیٹر کر رہا تھا کہ کیا ہو گیا, تو وہ جو بات کر رہے تھے وہ کوئی آئے حدیث بتا وہ ختم ہو گئی تھی کوئی بات ہوئی, اب شب قدر پہ آ گئے تھے وہ, ان کو پتہ نہیں کیا لا رہا لپا دیا تھا کہ یہ ہے صبح صبح اٹھ کے آ جائے آپ اپنا صبح صبح پاؤڈر واڈر منہ پہ لگا وہ لائیو ہوتا ہے. ہاں صبح پانچ شہری کے بعد وہ ٹی وی پہ آتا ہے پی ٹی وی ورلڈ, उसमें जो है वो दुनिया में कहीं भी जिनको नहीं होता वो आ जाता है। पता नहीं कोई ऐसे गैर मारूफ आलम टाइप के नहीं, जैसे डॉक्टर मतलब मुझे लग रहा था यूनिवर्सिटीज के थे। हाँ उनमें से एक को मैंने यूनिवर्सिटी में देखा, मैं उनका नाम नहीं पता, तो वो भी थे एक दिन, वो भी थे। तो बताने का मतलब ये कि मैं तीन दिन से ही मॉनिटर कर रहा हूँ। उसके बाद वो बहुत देर शबे कदर का, मैंने कहा शबे कदर का, तो फिर वो दिखा, वो याद दिला दिए कि जी वो आप आयत बताए थे, वो हदीस बता रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो खुद ही भूल गया वहाँ वो उनको या, वो बहुत देर पहले बताया। वो उसको तो पता है ना एंकर पर्सन को कि बेटा ये तो ऑन एयर है नहीं, तेरी बकबक सिर्फ मैं ही सुन रही हूँ बैठी हुई। तो अच्छा फिर उन्होंने दोबारा से दोहराएंगे दोहराइए, तो बड़े मुश्किल से वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो चले गए कराची का जब आगे खत्म हो गया वो प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो ही कहेगा, अगर आप उससे पूछे वो कहेगा मैं तो अल्लाह रसूल की बात कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या करो, मुझे इससे क्या सरोकार, वो क्या कर रहा है सरोकार ये कि भाई वो शहरी ट्रांसमिशन जो लोग देखने के लिए बैठे है ना, वो शहरी जिस तरह मेरी बीवी है, फलसफा तो नहीं पड़ी थी ना वो, उसको तो अल्लाह रसूल की बात लगा दी, चलो भाई अल्लाह रसूल की बात। मेरी बीवी खाने के बाद टीवी नहीं चला मेरी थी, सही ना, लेकिन शहरी के बाद वो चलता है, सही है। तो वो कि अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अच्छी बातें सुने, अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अल्लाह रसूल की कोई बात नहीं भाई, उसमें हबीब और ये ऑल्पर्स और ये हम देखते रहे। और ये मैंने जब उसे समझाया तो मानने पे भी तैयार नहीं था, फलसफा में हर वक्त क्रिटिकल, हर चीज पे क्रिटिसाइज, हर चीज पे क्रिटिसाइज। वो अच्छी बात तो उन्होंने बता दी ना, चलो एक हदीस तो आपने सुन ली, तो एक हदीस सुन ली, लेकिन उसके साथ और जो मेरे दिमाग में गया, मैं तो 38 साल का आदमी हूँ, 37 साल का आदमी हूँ, वो 3 साल का बच्चा वो हदीस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसको वो मुर्गी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। इस मुल्क में पता नहीं कितने बेशुमार लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, लोग गोश्त चोरी कर रहे हैं, लोग उठा के ले आ रहे हैं दूसरे का सामान, उनको तुम टीवी पे मुस्तकिल दिखाया जा रहा है रमजान में खाने की चीजें, वो खा नहीं पा रहा। मैं खजूर लेने गया तो एक अच्छे खासे शरीफ आदमी आया, कह रहे खजूर के कितने का डब्बा, उसने कहा वो जो है 120 रुपए का, बोले भाई हम फिर जो है ना हम नमक से ही रोजा खोल लेंगे, चला गया। और मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप मत लें नमक से रोजा खोल। तो बताने का मतलब ये कि लोग अच्छे खासे सफेद पोश आदमी खजूर खाना मुमकिन हो गया, जो कि कराची के से जो है 2 किलोमीटर 2 घंटे के फासले पे उगता है, वो नहीं हासिल कर पा रहा, वो हमारे सिंध का है वो है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है उसके पीछे एक इल्मियत है, जो इल्मियत तुम्हें बताती है कि देखो जिंदगी का मतलब ही ये होता है, जिंदगी का मतलब होता है रजा इलाही का हुसूल, या जिंदगी का मकसद होता है क्या कहते हैं अपने आबा अजदाद के तरीकों पे चलना, या जिंदगी का मकसद होता है फरमाया जमा करना। इसका मतलब है सिर्फ इल्मियत नहीं होती, इल्मियत के पीछे खासन का तसव्वुर खैर होता है। अगर तुम अपने आबा और अजदाद की प्रैक्टिसेस को इंट्रिंसिकली खैर ही नहीं मानते तो उसके लिए कोई इल्मियत या कोई इल्मी ढांचा भी खड़ा नहीं करोगे और उसके पीछे कोई वैल्यू स्ट्रक्चर उसके सपोर्ट पे नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे आबा और अजदाद जब मर जाते हैं तो उनकी रूहें चली जाती हैं और वो रूहें तुम्हारी हिफाजत करती हैं, और वो उनकी हिफाजत मशरूत होती है इस बात से कि तुम उन प्रैक्टिसेस को जारी और सारी रखो, तो वो लिंक होती हैं खुदा में और तुम में, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में जो मिसिंग लिंक होता है वो तुम्हारे आबा और अजदाद की रूहें हैं। जैसे ये रेड इंडियंस का ये फायर में तब्दील हो जाता है, तो वो जो डिवाइन फायर है और जो ये वर्ल्ड है उसके बीच में एक पेरिफरी पर एक तुम्हारे एंसेस्टर्स की रूह है जो मदद करती है, तुम्हारी हिफाजत करती है उस बड़ी डिवाइन फायर। लेकिन अगर तुमने अपने आबाजाद की रिवायतों को तोड़ा तो वो बीच में हट जाएंगे और तुम नेचर तुम पर अजाब मुसल्लत कर देगा। ये एक मेटाफिजिकल पोजीशन है, ये मेटाफिजिकल पोजीशन बगैर एपिस्टेमोलॉजी को फंक्शन नहीं कर सकती, तब कहीं जाकर एपिस्टेमोलॉजी जनरेट करती है खास करके आपका। तो ये जो आज मैं और आप ये कंपार्टमेंटलाइजेशन को फील कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोहेरेंस उछल हो जाती है, तो वो कोहेरेंस आप देखें जो कि फंक्शन कर रही है आपकी। ठीक है क्वेश्चन,
मतलब ये कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये ट्रांसेंडेंटल है जो कि रीडिफाइन कर रहा है तमाम स्ट्रक्चर्स को,
वो इसलिए हो गया, कोई भी हो सकता है। अगर आपका तस्वुर है ट्रांसेंडेंटल कि भाई हम इस सवाल को बहस नहीं करेंगे कि इंसान की जिंदगी का मकसद फरमाए की उलूहियत का एतराफ है, अगर तुमने इसी को चैलेंज कर दिया फिर तो तुम इस तस्वुर इल्मियत को और उस तरह से वो नहीं कर सकते, फरोग नहीं दे पाओ। यानी कि इस्लामिक बैंकिंग की तरक्की के इम्कान उतने रोशन नहीं है जितने सेक्युलर बैंकिंग के तरक्की के इम्कान रोशन, क्योंकि एक वक्त आगे तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं जो हलाल हराम का चक्कर जो है तुम्हारी सरमाया जमा करने की सलाहियत में रुकावट पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में हो सकता है कि पोटेंशियली एक दूसरा माशी निजाम ज्यादा सरमाया पैदा कर ले, जो भी वो हराम और हराम की बंदे से आ रही है। तो तसव्वुर खैर की ट्रांसेंडेंटलिटी और तसव्वुर खैर की यूनिवर्सलाइजेबिलिटी, आप जब कहते हैं कि हम अपने तसव्वुर खैर के मुताबिक अपने अवतार का तयन करेंगे, तो सबसे पहला एतराज आप पे क्या होता है कि आपके मुसलमानियों को सब तो सारी दुनिया थोड़ी मानती है, लिहाजा आपकी मजहबी अवतार चूंके एक ऐसे तसव्वुर खैर से निकलती है जो कि आफाकी नहीं, इसलिए ये अवतार कमजोर है, लिहाजा आप अपनी मजहबी अवतार से ऊपर क्यों उठना चाहते हैं, क्योंकि वो तसव्वुर खैर जो आपकी मजहबी अवतार को फरोग दे रहा है वो आफाकी नहीं, लिहाजा आप एक ऐसे तसव्वुर खैर की तलाश में निकल जाए जो आफाकी हो, चाहे उसके नजरिए में आपको अपनी मजहबी अवतार की कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जो पूरी साइंस के ऊपर हमने बहस की थी और टेक्निकलिटी से बहस की थी, तो क्या एक ऐसा डोमेन जो कि यूनिवर्सलाइजेबल हो, जो कि ट्रांसेंड करता हो आपकी पर्टिकुलरिटी ऑफ वैल्यू से, जो कि यूनिवर्सलाइजिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा,
इसमें जो मतलब आपने शो की और राजा परवेश की है मिसाल दी, मतलब और आप इलाके जो मतलब उससे तो ये मतलब आसुर करता है कि मतलब हक जो है वो बहुत ही कमजोर होता है, और जो है मतलब एक जो मतलब अहले खातिर जो होते हैं ज्यादा ताकतवर होते हैं, और अगर हक जो है और अगर किसी भी जो है मतलब सोसाइटी में या माशरे में कोई इल्मी तो गालिब हो जाए हक के पर हक जो है तो सोसाइटी उसी को कबूल कर लेती है, तो आया ये हक की कमजोरी का इजहार है या आदिल की ताकत का इजहार है या कोई घटना है।
मैंने तो ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस दिया वो इसलिए दिया कि इस वक्त जो अवदार की तरतीब का पैमाना है वो जरूरियत सरमाया ही है, इसमें कोई शक नहीं। हम तो ये कि ये बातें हैं, ये तो हम कहते हैं हमारा ईमान है बातें, लेकिन अगर फर्ज किया कि हमने उस आम तौर पे हम ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो अच्छे मुसलमान नहीं रहे, इस वजह से हम ये सब बदमाशियां हो रही नेक हो जाए, तो ये जो अप्रोच होती है ये एब्स्ट्रैक्ट करती है आपके नेक होने को, मशरूत नहीं करती कि कौन सी इल्मियत गालिब है और कौन सा निजाम जिंदगी रायजुल वक्त है। इसी निजाम जिंदगी में, इसी रायजुल वक्त निजाम जिंदगी में वो नेक घराना मौजूद है, लेकिन जो इल्मियत है उसका जोर जो है उस निजाम जिंदगी के, वो क्यों उनको नेक मानता है ऊपर नहीं आने देता, क्यों? क्योंकि निजाम जिंदगी उस नेकी को एब्जॉर्ब करने की इस्तेमाल नहीं रखती। तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये कहते हैं कि जब आप किसी अकदारी जिद्दोजहद में जाए तो उस अकदारी जिद्दोजहद को मुंसलिक करें उस तसव्वुर खैर से और उस तसव्वुर इल्मियत से जिसके साथ वो जुड़ी हुई है नामियाती तौर पर। अगर आपने सिर्फ अखलाकियात की कोशिश की तो आप उसी निजाम जिंदगी के अंदर एक सेफ हेवन तलाश करने की कोशिश करेंगे जो कि ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। असल में आपको उस इल्मियत को बेदखल करना पड़ेगा जिस इल्मियत की बुनियाद पर उस तसव्वुर खैर के पनपने और फलने फूलने के इम्कान मुमकिन नहीं रहे जो कि खुदा और उसके रसूल से आ रही थी। उस तसव्वुर खैर की तरफ जाने के जाए बगैर आप वो इखलाकियात जनरेट नहीं कर सकते जो कि खुदा और उसके रसूल की तरफ से आ रही थी। असल मसला ये है कि खुदा और उसके रसूल को अभी भी लोग मानते हैं और अभी भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो इल्मियत है वो तो सोशल साइंसेस की है भाई, वो थोड़ी मानती है उसको, मानती है कोई? सोशियोलॉजी में आप पूरी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक एमएस एक कोर्स मुझे आप बता दें जो बताता हूँ कुरान और सुन्ना किस किस्म की सोशल एंथ्रोपोलॉजी को जनरेट करें, इकोनॉमिक्स में बता दें, पॉलिटिकल थियोरी में बता दें, मेडिसिन में बता दें। आप कहते हैं ये तो सख्यता में मुसलमान तो माशाल्लाह हम लोग हैं ही, हम लोग कान में अजान दे ही जाती है, मर जाते हैं तो नमाज जनाजा होती है और जो है बकरीद में बकरे रखते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, सकात देते हैं। वो भाई इल्मियत क्या है? क्या आपकी हनफाइज की इल्मियत मुतासर नहीं हुई सोशल साइंसेज डिस्कोर्स और सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स की डेवलपमेंट? लोग कुर्बानी नहीं करते, लोग कुर्बानी नहीं करते, लोग कहते हैं कुर्बानी के बराबर पैसा हम एजी वालों को दे देते, कुर्बानी के बराबर पैसा लेके हम सहारा टीवी में देते। अभी जकात के मसारिफ है ना कि किसको आप मिलेंगे, तवायफों को और पिंच को तो नहीं देंगे ना आप, वो तो नहीं है ना मसारिफ। कल आ रहा था सुबह, कल 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें सहारा ट्रस्ट वालों के लिए एटीवी में प्रोग्राम आ रहा है, पूरी दुनिया से उनको वो मिले जकात उनके लिए, उनका जो हॉस्पिटल है उसके लिए और उनका जो स्कूल है उसके लिए। एक आदमी ने कहा मैं 50 लाख रुपए आपको देना चाहता हूँ और ये मेरा नाम है और ये वो, और आपका मैंने जियो टीवी के साथ एक प्रोग्राम देखा था, जियो टीवी के साथ एक प्रोग्राम जिसमें आपने बताया था कि आपको बीएमडब्ल्यू पसंद है, तो मैं आपको बीएमडब्ल्यू भी एक देता, बीएमडब्ल्यू भी दे रहा। ये वो क्यों दे रहा है? ये वो इसलिए नहीं दे रहा कि उससे आर्टिस्ट उसको पसंद है, इसलिए कि अल्लाह नहीं खुश होगा, इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। एक नेक आदमी को दे रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम कर रहा है। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि तलाश करो, खुद जाओ, खुद जाके तलाश करो खुद, या फिर तुम्हारी स्टेट दे, वो स्टेट इस तरह की नहीं होगी जो खा जाए सारा पैसा और जाके अपने स्विस बैंक के अंदर रखे ले आए पैसा, या फिर स्टेट हो जो अबू बकर की स्टेट वैसी स्टेट, और अगर नहीं दे तो मार भी पड़ेगी तुम्हें। इम्पोर्टेंट बात ये कि वो ये दे रहा है ना, नेकी समझ के कर रहा है वो। इसी तरह मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो बकरीद में बकरे नहीं काटते, वो कहते हैं हमारे टीचर थे वो कहते थे व्हाट इज दिस इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटरिंग, बकरीद को वो कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटरिंग। मैं चुप रहता था, मैं एक दिन दिमाग को मैंने कहा सर इट्स नॉट इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटरिंग, इट इज डिस्क्रिमिनेटेड स्लॉटरिंग, बिकॉज वी डू नॉट स्लॉटर पिग्स, वी डू नॉट स्लॉटर दोज पीपल हु डोंट अग्री विद आर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, वी डोंट स्लॉटर दोज एनिमल्स विच आर legitimate but they are not being used as livestock. हिरण की आप कुर्बानी नहीं करते, अबू हनीफा के पास हिरण की अगर आप लाइव स्टॉक के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं करते, उसकी आप कुर्बानी ना करें। ये नहीं है शिकार पे निकल गए मुफ्त में जाके शिकार करके लाए उसकी कुर्बानी करें। ये करने की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं करना। लाइफ स्टॉक से हो रहा है फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं होती उस बात से।
बार जो भी मिलता है उसे काट तो देते हैं। मैंने
बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जी चाहता है उनके गले पे छुरी फेर दें लेकिन नहीं फेरते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ यही तो है आपके अंदर यही तो नेगेटिविटी है आपकी। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पॉइंट ऑफ व्यू मिस इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन। तो बताने का मतलब वो कहते हैं भाई मैं तो भाई ये समझता हूँ कि सब लोगों को पैसे दे देने चाहिए बोला जो खून फैलता है गंदगी होती है और उजड़ियाँ आती हैं। अब अयाम नहर में आप कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे इसके पीछे एक इल्मियत है ना। आप उस इल्मियत को नहीं मानें उस इल्मियत को जब आप नहीं मानेंगे तो फिर आप वो एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। लेकिन आप एक दूसरी एक्टिविटी को जस्टिफाई वही साहब जो वो होता है बसंत लाहौर में वो मुझे देखने जाते ठीक नहीं है बोले तुम लोग इस तरह के हो और हर अच्छी चीज को तुम लोग कंडेम करते हो इसमें क्या है कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। तो वो कल्चरल एक्टिविटी जो के बकरीद में तो उसको आप कंडेम करते हैं बोले इसमें क्या है तो अच्छा है इसमें फॉरनर्स आते हैं ये होता है आपका कल्चर प्रमोट होता है। मैंने कहा सर 17 बच्चों की गले कट गए उससे वो बोले वो मना उससे पाबंदी ले। मैंने बताया बकरीद में किसके कौन मरता है बोले नहीं उसमें बच्चों के गले कट रहे हैं लेकिन वो ठीक है वो ठीक है क्यों इसलिए कि वो सोशल साइंसेस एपिस्टेमोलॉजी से कंसिस्टेंट है। ये नहीं है ये नहीं है वो है अगर फिर क्या कोई इकोनॉमिक थियरी आ जाए जैसे पाइड वालों ने कि भाई बड़ी जबरदस्त है बकरीद होनी चाहिए बकरीद अगर वो कहते नहीं होनी चाहिए तो क्या नहीं करते लोग लेकिन होनी चाहिए जिससे नहीं वो बड़ी खाल वो होती है ये होती है खाले बिकती है और ठीक है
ठीक है।
कल